مومن مومنات کو بھی بی بی کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں. آج کا دن بڑا عظیم دن ہے, بی بی کی شہادت واقع ہوئی. یہ ہمارا سورہ نور کا آخری سلسلہ ہے آج, اور آج اور بی بی کی شہادت بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. ایک درود پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ نور کی آخری آیتوں میں سے ہے, ہم آخری کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس وقت. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے, اور جب کوئی کام جمع کرنے کا ہو اور جمع ہو تو ان کی اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے. جو لوگ ان کی اجازت لے کے جاتے ہیں وہی خدا پر اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ جب کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو جس کو چاہو اجازت دے دیا کرا کرو, اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرا کرو, اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم کا درجہ بتایا ہے کہ رسول اکرم کا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ جمع ہو تو ان کی اجازت کے بغیر آپ جا نہیں سکتے آنکھ بچا کر. یہ رسول اکرم کا درجہ ہے. تفسیر میں ہے کہ حنزلہ نام کے ایک صحابی تھے, اور حکم یہ تھا کہ کل جہاد پہ جانا ہے. حنزلہ نے رسول اکرم سے اجازت چاہی جانے کے پہلے کہ یا رسول اللہ میری یہاں شادی ہوئی ہے, کیا میں چلے جاؤں گھر؟ تو کہا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے. حنزلہ بھیش عقد کیا, دوسرے دن شہادت پائے. یہ ایمان کا درجہ تھا حنزلہ کا, اور اس سے پھر ان کو ایک بچہ بھی ہوا, اور اس کی بڑی لمبی کہانی ہے. لیکن یہ تفسیر میں ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب بھی کوئی جہاد کا معاملہ ہوتا تھا اور جب رسول اکرم بلایا کرتے تھے تو رسول اکرم کی اجازت کے بغیر لوگ نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ کچھ منافق بھی تھے جو آ کے بھیڑ میں شروع آ جاتے تھے اور نکل جاتے تھے آنکھ بچا کے. اسی طرح جمعے کا جب خطبہ ہوتا تھا تو رسول اکرم جب کچھ خطبہ دیتے تھے اور کچھ بات خاص بتاتے تھے تو لوگ چپ چاپ سے نکل جایا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنبیہ کری ہے کہ دیکھو جو اجازت لے کے جاتے ہیں وہی رسول پہ اور اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. اور اس میں کیا ہے, وسطہ فرولحم اللہ. پہلے تو کہا کہ جس کو چاہو اجازت دو, ایک تو یہ کہا ہے. پھر کیا کہا کہ اے نبی تم کے لیے استغفار مانگا کرا کرو, اور اس کے آگے کیا کہا ان اللہ غفور الرحیم. نبی جب استغفار مانگیں گے تو پھر کیا کہا ان اللہ غفور الرحیم. تو نبی کا درجہ بتایا کہ نبی وہ ہے کہ نبی سے کہا گیا کہ تم ان کے لیے بخشش مانگو, تو خدا نے آگے کہا کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے. اب جو کہنے والے مسلمان کہتے ہیں کہ نبی چلے گئے, پیغام پہنچا گئے, بات ختم ہو گئی, ان سے کہیں کہ اسی آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا کہہ رہا کہ نبی تم ان کے لیے بخشش مانگو, اور خدا بخشنے والا مہربان ہے کہ جب نبی بخشش مانگے تو خدا بخش دے. کیونکہ آیت آگے ان اللہ غفور الرحیم کہا ہے اسی اللہ نے کہ جب نبی بخشش مانگے تو نبی بھی بخشش جبھی مانگتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کوئی اس کے لائق ہے. درود پڑھ دیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا قد یعلم الذین یتسلون منکم لعبادا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبہم فتنتم او یصیبہم عذاب علیم. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس آیت کی آگے اور اس کو ڈیٹیل میں نے بتایا ہے, اس آیت کو آگے اور ڈیٹیل میں بتایا. آخری آیت ہے لا تجلو دعا الرسولی بینکم کا دعا بعدکم بعدا. رسول کے بلانے کو تم ایسا خیال نہ کرنا کہ تم تو آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل لیتے ہیں. تو جو لوگ ان کے حکم کی خلافت کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پہ کوئی مصیبت میں پڑ جائے یا ذلیل کرنے والا عذاب ان کے اوپر نازل ہو. اب ایک ماحول بتایا جا رہا ہے, مدینہ کا ماحول بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں سے ماحول بتا رہا ہے کہ لوگ مدینہ کے ٹھیکے سے کچھ تو ایسے تھے کہ چپ چاپ نکل جایا کرتے تھے. پہلے آیتیں پڑھ چکے ہم سورہ نور کی, دوسری آیتوں میں بھی انہی باتوں کی وضاحت کی گئی تھی. اس وقت کیا کہا کہ رسول کو بلانے کو تم احساس خیال مت کرنا کہ تم آپس میں دوسرے بلاتے ہو. जब रसूल बुलाता मतलब हम बुलाते, रसूल जब बुलाता तो हम बुलाते। बेशक खुदा को मालूम है कि जो तुम में से आंख बचाकर निकल जाते हैं, तो जो आंख बचाकर निकल जाते हैं उनको लाने का, कि जो लोग उनके हुक्मों की मुखालफत करते हैं, अगर आपने खुदा रसूल ने बुलाया और हम निकल गए तो हम उसके खिलाफ, रसूल के खिलाफ हो गया, रसूल के खिलाफ हो गया। क्या अल्लाह ने कहा कि उनको डरना चाहिए ऐसे लोगों को कि उनको कोई मुसीबत ना पड़ जाए या तक एक अजाब नाजिल हो उन पर, क्योंकि लोग निकल जाया करते थे, रसूल अकरम को की इज्जत ना करते थे। ये आयतों से जाहिर है कि दो तरह के लोग थे, एक ये तरह के थे एक वो तरह के थे, वरना आयतें क्यों आती हैं। दो ग्रुप बन चुके थे, एक मुनाफिकों का एक मोमिनीन का, क्योंकि तफसीर में यह है कि बहुत से लोग रसूल को जब बुलाते थे तो आते नहीं थे, चले जाते थे। ला तजलू दुआ और रसूल बहन का दुआ बाद ऐसा मत समझ लेना तुम आपस में दूसरे बुला रहा। और दूसरा तफसीर में यह है कि एक तो रसूल के बुलाने को सुनते नहीं थे और दूसरा क्या, जब रसूल को बुलाते थे तो नाम लेके बुलाते थे बेइज्जती के साथ। अरब जाहिल भी होते थे, मगरूर को नाम लेके बुलाते थे। तो ये जब आयत नाजिल हुई, तो जब ये आयत मौला अली ने बीबी फातिमा के सामने पढ़ी, اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد, तो वो डर गई। तो जब रसूल अकरम घर तशरीफ लाए तो फिर इस तरह का कि या रसूल अल्लाह, बाबा जान नहीं बुलाया क्योंकि आयत आ गई थी कि रसूल को बुलाने ऐसा मत ख्याल करना चाहिए तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। तो कहा या रसूल अल्लाह, तो दो तीन दिन तो रसूल अल्लाह सुनते रहे या रसूल अल्लाह। गौर से सुने इसको, ये बिहार से पढ़ रहा हूँ मैं अभी, बिहार से अभी तफसीर ईमानी की जगह बिहार, ये जो बात है इस आयत की डिटेल, ये जो हिस्सा है ये बिहार का है। तो दो तीन दिन तो रसूल सुनते रहे, बाद में रसूल ने कहा कि बेटी तुम जब बाबा जान कहती थी तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, ये तुमने रसूल्ला कहने को शुरू करा है। तो कहा कि बाबा जान ये कुरान की आयत आई है। तो कहा कि ये आयत उन बदबख्त अरबों के लिए आई है जो मेरी बेइज्जती करते हैं, तुम मेरी जरूरियत हो, यह आयत मेरी आल के लिए नहीं है, मेरी जरूरियत के नहीं, लिए नहीं है। और जब तुम मुझे बाबा जान कह के पुकारती हो, मुसलमान ही समझ ले, फर्क है आल में और सहाबियों में, समझ लो मुसलमान। कहा कि जब तुम मुझे पुकारती हो बाबा जान कह के, तो मेरे दिल को खुशी होती है, वो मेरा परवरदिगार उससे राजी होता है। ये फर्क है आल में और सहाब में, काश मुसलमान समझता। इसके बाद जो आखिरी जो आयत आई है, ये सूरह नूर की आखिरी आयत है। ये कोई सी भी सूरह की आखिरी और पहली आयत बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है, बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है। अल्लाह इन्नल्लाह माफिस समाति वल अर्द कद यालमु मा अंतुम इले व योमा युर्जुलो इलेही फयुनब्बिहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्ले शैइन अलीम। देखो जो कुछ आसमान और जमीन में खुदा का है, और जो इस तरीक़ में तुम्हें उसको जानता है, कद यालमु मा अंतुम इलेह, जिस तरीक़ में तुम्हें उसको जानता है। सूरह नूर है, आखिरी कह रहा है अल्लाह हर इंसान से, क्या कह रहा है अल्लाह, देखो अल्लाह, देखो जो कुछ आसमान जमीन में सब खुदा का है, और जिस तरीक में तुम हो उसको जानता है। वो योमा युर्जुल अलेहिम, जिस दिन तुम उसकी तरफ लौट कर जाओगे वो तुमको बता देगा। वल्लाहु बिकुल्ले शैइन अलीम, खुदा हर चीज पे से वाकिफ है। सारे मुसलमानों को, पहले तो सारे इंसानों को अल्लाह ने कहा सूरह नूर की आखिरी आयत में, फिर मुसलमानों खुसूसन कहा कि देखो जो कुछ आसमान जमीन में मेरा है, वो जिस तरीके पे भी तुम हो, अब समझ लो मुसलमान किस तरीके पे चल रहा हो, हर एक का तरीक बता रहा है, वो उसको जानता है। वो जिस दिन तुम उस तरह लौट के आओगे तो तुम्हें वो बता देगा। ये तौहीद है मुसलमान, ये तौहीद समझ ले, ये आखिरी आयत है सूरह नूर की, इसको समझ ले, वो बताएगा। वल्लाहु बिकुल्ले शैइन अलीम, वो हर चीज से वाकिफ है। मुसलमानों को 73 फिरके हो गए, एक जन्नत में जाएगा ना, कौन जाएगा जन्नत में? जिस तरीक पर खुदा जानता है, अल्लाह ने खुद कह दिया कि देखो मैं तुमसे मोहब्बत जब करूंगा जब तुम मेरे हबीब की पैरवी करोगे, ये आया था ना मशहूर आया था, क्या तरीक चाहता है कि मेरे हबीब की पैरवी करोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। हर मुसलमान अपनी गर्दन में झांक के देखे क्या वो अपने हबीब की पैरवी करता है। तरीका सिर्फ वो पसंद है जो हबीब की पैरवी का है। हबीब की पैरवी क्या है? हबीब सकलेन छोड़ के गए थे, कुरान हकीम और अहले बैत। हर मुसलमान अपनी गर्दन में झांक के देख ले कि उसको बताया जाएगा कि उसने क्या करा, जिंदगी को टटोल के देख ले कि जो तरीक पर चल रहा है क्या वो तरीक रसूल अकरम का है या अपना बनाया हुआ है। जैसा रसूल अकरम बैठते थे, जैसे वो खाते थे, जैसे वो चलते थे, जैसे गुफ्तगू करते थे, जिस तरह से जिहाद करते थे, क्या मुसलमान कर रहा है? हर तरीके का जिहाद, घर का जिहाद, बाहर का जिहाद, अखलाक से जिहाद, हर तरीके का जिहाद जो करते थे क्या वो कर रहा है? जिस तरह से खुदा से डरा करते थे, जिस तरह खुदा का नूर उनके ऊपर नाजिल होता था, खुदा तो कह रहा है देखो तुम्हें रसूल की पैरवी करो, अगर अगर हमको सलाहियत न देता कि हम पैरवी के काबिल न थे तो हमसे वो काम न करवाता। वो खुदा के अल की बाहर की बात है कि अगर खुदा खुदा हमें ये सकत थी नहीं कि हम रसूल की पैरवी कुछ कर पाते तो आप खुदा के अल को चैलेंज कर रहे हैं। खुदा ने तो कहा करो पैरवी, मैं तो बैठा हूं तुम्हारा तारीख देखने को, तुम्हारा किस तारीख पर चल रहा है मैं जानता हूं। अब तुम बचाओ लिबरल मुस्लिम हो जाओ या कोई कोई रसूल की पैरवी करे उसको फेनेटिक कह दो, ये तुम्हारे तरीके हैं। या कोई कुरान पढ़ देगा, आप बहुत कुरान पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह से बहुत डरा रहे हैं, आप बहुत कयामती हो गए हैं। रसूल क्या करते थे भाई? रसूल अकरम की पैरवी करो। रसूल जो करते थे और जो तरीका आप एग्जैक्ट कर रहे हो खुदा को मालूम है। हर इंसान को चाहिए कि माहौल को ना देखे, सोसाइटी को ना देखे, कुरान में डूबा रहे, आज का जमाना खराब है, कुरान की आयतें पढ़ता रहे और हदीसें पढ़ता रहे और अपनी हालत को जांचता रहे, दुरूद पढ़ दे। तो दो तरह के ग्रुप बन गए जिन ग्रामी सूर्य नूर से, एक वो गिरोह जो कि इताअत के लिए तरफ बुलाया जा रहा है और एक वो गिरोह जो कि मासीत पे मासीत कर रहा है। जाहिर है कुरान की आयत उसने पढ़ के सुनाई सारी आयतें चार चौथी मंजिल से। तो दो गिरोह हो गए, वादल लजीना आमनु मिनकुम व अमलु सालह लियस्तगफिलनहुम फिल अर्व कमा यस्तगफिल लजीना मिन क़ब्लिहिम वले युक्मनहुम दीनहुम बिरतदाहुम वले युबद्दलहुम मिन बादे खौफिन अमना याबुदुनी ला युशरिकु बी शैआ व मन कफर बाद अली का फऊलाए का हमल फास को दुरूद पढ़ दें। ये आयत, ये सूरह नूर की मैं आखिरी आयत पढ़ रहा हूँ, इसके बाद से सूरह नूर का सिलसिला ख़त्म। और ये आयत बहुत ही सेलियंट आयत है, इसका मैं तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूँ। जो लोग तुम में से ईमान लाए और अमल नेक करे उनसे खुदा का वादा कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा जिस तरह उनसे पहले लोगों को बनाया था और उनके दीन को मुस्तकम पायदार बना देगा जिस दीन को उसने उनके लिए पसंद करा है और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे, वो मेरे साथ किसी को शरीक न बनाएंगे और उसके बाद जो लोग कुफ्र करें वो लोग फासिक हैं। तो अजीजा गिरामी, ये जो बशारत दी गई है, ये जो बशारत दी गई किसको दी गई है? उन लोगों को दी गई है आमिना मिनकुम व अमिल सालिहा, तुम में जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अमल सालेह करे। तो दो दो गिरोह हो चुके हैं, एक मुनाफिकों का गिरोह और एक मोमिनों का गिरोह। तो अल्लाह ने कहा कि देखो मोमिनों का गिरोह तुमको मैं बशारत देता हूँ, तुमको मैं बशारत देता हूँ कि जो जो रसूल के पैरोकार हैं, जो अहलेबैत के पैरोकार, तुमको मैं खलीफा बना दूंगा जिस तरह पहले वालों को खलीफा बनाया था। वो जो दीन मैंने तुम्हारे लिए पसंद करा उसको मुस्तकम पायदार बना दूंगा। इस आयत का नुजूल ये है तफसीर ईमानी में कि जब मदीने में मुसलमान सोया करते थे रात में तो डरा करते थे कि कोई कोई हमला ना कर दे, एक खौफ के आलम में रहते थे। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें खौफ के बाद अमन बख्शूंगा। इसके अंदर काबिल गौर दो चीजें हैं। इसमें अल्लाह ने कहा खलीफा मैं बनाऊंगा। इसमें क्या कहा लाना है, मैं तुम्हें खलीफा बनाऊंगा। तफसीर में खलीफा पहले कौन बना था, मूसा को अल्लाह ने खलीफा बनाया था, दाऊद को खलीफा अल्लाह ने बनाया था, सुलेमान को बादशाहत अल्लाह ने दी थी, पहले दे चुका अल्लाह। अल्लाह ने इसने कहा उस तरह बनाऊंगा जैसा पहले वालों को बनाया था, उसी तरह बनाऊंगा तुम्हें, मैं बनाऊंगा, तुम खुद बन बन के बैठ जाना, मैं बनाऊंगा तुम्हें, तुम खुद बन के मत बैठ जाना। और क्या कहा कि मैं तुम्हारे दीन को मैं उसको सालिम कर दूंगा, उसको मैं स्टेब्लिश कर दूंगा, जिसको मैंने पसंद करा है, जिसको पसंद करा है। अल्लाह ने दीन पसंद कब करा है, यो मैं गदीर को पसंद करा ना, आज खुदा तुम्हारे दीन से राजी हो गया। गदीरी दीन, विलायत के दीन की अल्लाह बात कर रहा है, गदीरी दीन की बात करा कि मैं उस दीन को तुम्हारे लिए स्टेब्लिश करूंगा जिसको उसने पसंद करा है। और दीन पसंद क्या हुआ, जिस दिन खुदा राजी हुआ, कुरान में राजी हुआ, विलायत के दीन को अल्लाह पसंद करता है जिस दिन राजी हुआ। और इसी विलायत के लिए इस आज की जो मजलिस है विलायत मजलिस है, आज की मजलिस विलायत की मजलिस है, बीबी की शहादत की, विलायत के दिन को मैं जो के जो वो कमजोर हो गया उसको मैं स्टेब्लिश करूंगा, उस विलायत के दिन को मैं स्टेब्लिश करूंगा, उसको मैं स्टेब्लिश करूंगा, इसको मैं स्टेब्लिश करूंगा। क्यों करूंगा मैं, याबुदुनी, ताकि ये लोग मेरी इबादत करें। वो ला युशरु की भी शेया, किसी शे को मेरे साथ शरीक ना करें। ये सब क्यों होगा, ये क्यों एस्टेब्लिश होगा, ताकि अल्लाह की खालिस इबादत हो सके। खालिस इबादत कब होगी, जब किसी को शिर्क ना करें। शिर्क क्या होता है, तागूत का शिर्क होता है। आज मुसलमान तागूत के पैरों हैं, इसलिए अभी तक अपनी जंजीरों में बंधे हुए। ये जब होगा, जबकि खालिस खुदा की इबादत होगी, याबुदुनी ला युशरिकु बी शेया की मंजिल के लिए इमाम जमा का जहूर है। ये आयतें इमाम जमा के जहूर की तरफ इशारा करती है, मुसलमान जानते हैं इस बात को कि जब आखिरी में जब इस्लाम फैलेगा और ये अल्लाह की तरफ से जो उनको खिलाफत मिलेगी, हर मुसलमान जाता है जब मेहदी आएंगे तो खिलाफत कौन देगा, अल्लाह देगा। ये हर मुसलमान का अकीदा है, हर मुसलमान के दो अकीदे, मेहदी आएंगे। दूसरी बात क्या, दूसरा क्या अकीदा है कि उनको खिलाफत अल्लाह देगा। तीसरा अकीदा यह है कि मेहदी जो आएंगे वो बीबी फातिमा के बेटे होंगे। हर एक जानता है, मुसलमान कोई भी खत्ते का मुसलमान ये बात तो जानता है कि आले मोहम्मद से मेहदी आएंगे, हर मुसलमान का ही अकीदा है। और हर मुसलमान अकीदा के अगर आले मोहम्मद तो दुरूद में पड़ेगा तो उसकी नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। और हर मुसलमान का अकीदा है कि आले मोहम्मद की बुनियाद बीबी फातिमा है। हर मुसलमान का ये अकीदा है। आयत अतीर जो नाजिल हुई, अहले बैत का जिक्र आया, हर मुसलमान खुशी या जबरदस्ती इस बात को कबूल करता है कि उस अहले बैत में बीबी तो है ही। हर मुसलमान अकली तौर पे मानने को मजबूर है कि अहले बैत में बीबी तो है ही, वो तो उनकी बेटी है। तो ये जो खुशखबरी जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने दी मोमिनीन को, जो कि रसूल के पैरों थे और रसूल के हुक्म को पैरों थे, कि देखो तुमको तुम्हारा जो विलायत ही जो दो दीन मैंने तुम्हारे लिए पसंद कराया, उसकी मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, उसकी खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाता हूं। वो क्यों होगा, ताकि जब इमाम आएंगे और अदल और इंसाफ होगा, तो ताकि उसके बाद तुम, ये तो छोटा लेवल है कि अदल और इंसाफ होगा और लोग चैन से रहेंगे, तो छोटा लेवल है। फिर अल्लाह ने क्या कहा, बड़ा लेवल ये है कि जब अदल इंसाफ हो जाएगा, सोसाइटी में पीस होगी, तो तुम फिर मेरी इबादत खालिस करोगे। यही तो गोल है। खुदा ने क्या कहा कुरान में कि मैंने जिनों इंसान को पैदा किया मेरी इबादत करे। गोल ये है, जो गोल का जो पीक जो होगा वो जब ही होगा, इमाम आएंगे वो बगैर किसी टेंशन के आप अल्लाह की इबादत कर पाएंगे, उस पुल को हासिल कर पाएंगे, उस लज्जत को आप हासिल कर पाएंगे जो कि शिर्क से दूर होगी, तागूती शिर्कों से, तागूती ताकतों से दूर होगी। उसकी मिसाल रेबर ने क्या कहा कि ये जो चीज होगी, जो इमाम का जहूर है और ये चीजें हैं, ये स्ट्रगल है, कांस्टेंट स्ट्रगल। इस ये जो 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 रास्ता है, ये स्ट्रगल का रास्ता है, स्ट्रगल इनकलाब का रास्ता है, स्ट्रगल का रास्ता है। हमको जब तक कि हम इमाम की मदद ना करेंगे, ये सिस्टम सेट नहीं होने वाला, एक दुरूद पढ़ रहे हैं। ये जो चीज है, ये जो विलायत की बात जो अल्लाह सुबहान तआला ने कही थी उसी की आदमी से बीबी की, कि बीबी रसूल की वफात के बाद बीबी एक वो चीज, वो हस्ती थी जो हर मुसलमान उनको मानता था कि ये वो हस्ती है कि रसूल के बाद उनकी वाहिद आली है, और उनकी जो इज्जत और जो शरफ था वो हर मुसलमान के सामने मौजूद था, और हर मुसलमान को मानना पड़ता था कि ये रसूल की वाहिद बेटी है और इनकी उनको इनकी इज्जत करना लाजमी है, क्योंकि मुसलमान ने देखा था मदीने के 6 महीने रसूल अकरम बीबी के चौखट पे गए और सलाम कहा कि ए अहले बैत तुम पर सलाम हो, और आयत तहीर पढ़े 6 महीने रसूल अकरम। हर मुसलमान उस बात को जानता था, और बीबी बाज रिवायतों से 75 दिन जिंदा रहीं, बाज के हिसाब से 90 दिन जिंदा रहीं। क्यों इतनी जल्दी बीबी चले गई? उसकी वजाहत सूरह अहज़ाब में खुदा ने करी। ये कुरान की आयतें अहज़ाब में, इनको आप गौर करें तो इनसे जाहिर है कि जिन लोगों ने विलायत छोड़कर सादतना और कुबराओं का कहा माना, सादत वो जो चीफ हैं, कुबराओं जो बुज़ुर्ग हैं, फ़अज़ल्लु सबीला कर दिया इन लोगों ने, फ़अज़ल्लु सबीला करा। तो क़यामत के दिन क्या होने वाला? क़यामत के दिन ये लोग कहेंगे जो पैरों हो गए थे, रब्बना आते हिम दैफैनी मिनल अज़ाबी, अल्लाह सुब्हानहु ताला तू उनको दुगना अज़ाब दे, वल अनहुम लानन कबीरा, इन पर बड़ी लानत कर। क्यों कर? क्योंकि ये थे तो बड़े, इन्होंने हक मारा, इन्होंने हक मारा, और हक मार कर हमको गुमराह कर दिया, हक मार को हमको गुमराह कर दिया, और हमको दोजख में उतारा, हक मार कर हमको दोजख में उतारा। तो अल्लाह सुब्हान तआला तू इनको दुगना अज़ाब दे, इनको सादतना को गुमराहों को, क्योंकि फअज़ल्लु सबीला, रस्ते पे चल रहे थे गुमराह हो गए, सबील पे थे लेकिन इन सादतना कुबरा ने गुमराह कर दिया। ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं, सूरह अहज़ाब, दिल से नहीं पढ़ रहा हूं मैं, सूरह अहज़ाब पढ़ रहा हूं। आखिरी आयतें, ये आयतें फ्रॉम 50 to 65 देख ले जाके समझो कुरान। सादतना कुबराओं ने गुमराह करा शहरों के, तो विलायत को तर्क करा, जिस दीन से खुद राजी थे, राजी था खुदा, उसको छोड़ा। अभी जो खुतबा पढ़ा गया बीबी का मदीने का, कि जब मदीने की औरतें आई बीबी के पास, क्या पढ़ा गया खुतबा में? अभी जो पढ़ा गया बिहार अनवार से बीबी का खुतबा, जब मदीने की औरतें आई बीबी से मिलने, तो बीबी रंजीदा थी। बीबी ने कहा मुझे तुम्हारे मर्दों से नफरत है, उनसे, उन तलवारों से जो कुंद हो गई है, कि तुमने अबुल हसन को छोड़ दिया, अबुल हसन को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि खुदा के दुश्मनों को उन्होंने कत्ल करा, उनसे दुश्मनी करी। अगर अबुल हसन को लेते तो तुमको वो उस दरिया पे पहुंचाते जहां के पानी लबालब भरा था दोनों किनारों पर, हरीस ना थे, खा के ना बैठ जाते। अरे वो लीडर थे, तुमने पैरों को चुन लिया। बीबी ने आगे क्या कहा? खिलाफत के जो खिलाफत आगे जाके खून उगलेगी, तुम मारे जाओगे। क्या हुआ? खिलाफत को छोड़ी, क्या हुआ? हिस्ट्री बताती है मुसलमानों की कि इसी मदीने में 50 साल बाद यजीद ने हमला करा, और क्या करा मदीने वालों के साथ? बीबी ने कहा तुम हमें याद करोगे? बीबी ने कहा हम तुम पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, हमने हमारी हुज्जत तमाम कर दी, हमारा काम था बताना तुम्हें, हम हमारा हक जबरदस्ती ना लेंगे, हमने हुज्जत तमाम कर दी, बीवी को जो गम था, मुसलमान यही नहीं समझा बीवी को गम क्या था। बीवी को गम ये इतना बड़ा गम न था कि इमाम अली को खिलाफत न मिली। इनके लिए मौला अली ने जिस तरह कहा खिलाफत मेरे लिए एक एक जलील चीज से भी बदतर है, तो बीबी और मौला में क्या फर्क था? बीबी भी इसी तरह की थी, जैसे मौला के लिए खिलाफत एक जलील चीज से बदतर थी, बीबी के लिए भी थी। तो बीबी को गम क्या था? बीबी को गम था कौम का, जो कौम जो बहकी है जो विलायत को छोड़कर, और जो जालिम जो मुसलत किए जाएंगे, वो जालिम जो मुसलत किए जाएंगे और जो गर्दने काटेंगे, और ये जालिम, और फिर आखिरत का गम था बीबी को कि किस तरह दोजख में जाएंगे अहले बैत के हक को छोड़ के। वो गम बीबी को था, वो मार लिया। अरे रसूल अकरम की बेटी थी, कोई दुनिया की शहजादी ना थी। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह रसूलो, जिन लोगों ने खुदा उसके रसूल को रंज पहुंचाया, यह आयत पढ़ी ना अभी मैंने, उन पे खुदा दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद करता है, वो जलील करने वाला अज़ाब तैयार है। रसूल अकरम की हदीस है, फातिमा मेरे बदन का हिस्सा है, सब मुसलमान जाते हैं। रसूल अकरम की हदीस है, जिसने फातिमा को रंज पहुंचाया उसने मुझे रंज पहुंचाया। अरे कुरान पढ़ो, तो जिसने फातिमा को रंज पहुंचाया अल्लाह क्या कर रहा है कि अल्लाह ने उसके लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा। लाना थे दुनिया में, उस दुनिया में। अरे कुरान साफ है भाई, आप खुद हदीसों में जा रहे हो, कुरान पढ़ो। ऐसा आपकी आदत है मुसलमान जाके पढ़े? अरे रसूल की बेटी को जिसने नाराज करा, रसूल को नाराज करा, अल्लाह को नाराज करा, उस पर लानत है। इसमें क्या शक है? ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? मुसलमान जानते हैं कि जब बीबी गई है तो बीबी ने वसीयत करी थी। बीबी की वसीयत है क्या? वसीयत है कि जिन लोगों ने मुझे नाराज करा है या बोला सर, उनको मेरे जनाजे में ना आन देना। मुसलमान हिस्ट्री में पढ़ ले किस किस को कौन कौन किस किस से बीबी नाराज थी। बीबी की जो 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 गम था, बीबी की जो 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 आप सोचें कि एक बीबी के, अगर सोचें कि बीबी एक बीबी के जो वालिद थे, वो जो रसूल है महबूब खुदा थे, बीबी को कितने महबूब होंगे? आप हमको जब रसूल खुदा इतने महबूब लगते हैं तो बीवी को रसूल कितने महबूब लगते होंगे। और जब जब रसूल फौत हुए तो बीवी को जो सदमा था, वो सदमा बयान के बाहर है। एक सदमा बाप के जाने का, दूसरा सदमा कौम के गुमराह होने का। इन सदमों की वजह से बीवी ने कहा, अगर ये मुसीबत अगर दिन में पड़ती तो रात हो जाती। ये सदमा के कौम ने मुंह फेर लिया। कौम ने यह करा कि थोड़े दिन बाद उसी दर पर आग लगा के लाई ताकि इमाम अली से बेयत ले। जब बीबी पूछती थी, अली तुम्हारा क्या हाल है, हमने सुना कि लोग तुम्हें सलाम नहीं करते, तो मौला अली ने सर झुका लिया कि इससे भी बुरा हाल है, जब मैं सलाम करता हूं तो लोग जवाब नहीं देते। ये हाल जब का है, आज ही कोई अली का पैरो है, सुन ले लो, और कुरान और अलबत का पैरो है, और अगर वो हिदायत करता है और कयामत से डराता है तो आज भी उसकी हालत इस सोसाइटी में वैसी ही हो जाएगी कि लोग वो सलाम करेगा तो लोग जवाब न देंगे। आज भी ये हालत है, इस मेंबर से कह रहा हूं रसूल के। शिया बनना आसान काम नहीं है, शिया बनना आसान काम नहीं है। शिया वो है जो खुदा परस्त हो, शिया वो जो कुरान परस्त हो, शिया वो है जो कयामत के दिन से डरता हो, शिया वो जो तौहीद परस्त हो। बीबी के लिए कहा जाता है, जब बीबी जब खड़ी होती थी नमाज के लिए तो उनको जहरा कहा जाता है, क्योंकि नूर चमकता था बीबी का, आसमान तक नूर जाता था। जिस तरह से जमीन वालों के लिए सितारे चमकते, उस तरह फरिश्तों के लिए बीबी अगर चमका करता था। देखो शिया ने अली, अगर जहरा के पैरों तो जब खड़े हो नमाज के लिए तो नूर चमके खुदा का। वो नूर कब चमकेगा? जब तक के कुरान को दिल पे नाजिल ना करोगे वो नूर न चमकने का है। जब तक के हक के आह में अगर सबर ना करोगे, जब सबर करोगे तो खुदा नाजिल होगा, जब सबर करके खड़े होगे तब नूर वो चमकेगा, जब खुदा राजी हुआ। खुदा कब राजी होता है बंदे से? जब वो जोहद में आ जाए, जब वो सबर में आ जाए। सूरह असर में क्या पढ़ा जाता है? आखिरी जो दर्जा है सबर का है। जब सबर आता है तो जोहद में इंसान चले जाता है, जब जोहद में चले जाता है तो फिर कहता है खुदा, कहता है अब तू मेरा हुआ, अब तू दुनिया का नहीं रहा, अब तू मेरा हुआ, अब मैं तुझ पर नुजूल करता हूं। जब नुजूल, बीवी इसी तरह जोहद में थी, कोने में चली गई थी मदीने के घर में कोने में रहती थी, और जब खड़ी होती थी उनके मालूम था ये मदीना भी मुंह फेर लिया, दुनिया मुंह फेर ली, खुदा का वहां था। फिर अल्लाह ने कहा देख बीवी मेरे तुझे नवाजा है इस नूर से, अरे शिया देख ले। जब अमर बिन मालूम करेगा ना करेगा, जब बीबी ने जब दरवाजे खटखटाया मदीने के, तो अमर बिन मालूम ना उनका करा था, मौला अली उनके साथ थे। वो जुल्म बीबी में हुआ विलायत के लिए। आज हमको भी चाहिए अमर बिन मालूम ना मुनकर करे, दरवाजे खटखटाए भले कौन दरवाजा बंद कर ले। आज की विलायत की तरफ बुलाए, आज के रहबर की तरफ बुलाए हम, आज की विलायत आज के रहबर की तरह बुलाए कि रहबर आज बुला रहे हैं। आज रहबर काय के लिए बुला रहे हैं? आज रहबर बुला रहे हैं याबुदुनी ला युशरिकु बी शैया की तरफ रहबर बुला रहे हैं कि खुदा की इबादत करो और ताबूत के साथ शिर्क ना करो। बीबी ने उस वक्त के ताबूतों के साथ जंग करी थी, याबुदुनी ला युशरिकु बी शैया। जब जंग कर रही थी बीबी, जब वो जंग कर तो रही थी, लेकिन उनके आंखों के सामने वो आयत मौजूद थी जो मैंने पढ़ के सुनाई कि देखो अल्लाह सुब्हान तआला ने खुशखबरी दे दी थी कि मैं तेरे बेटे को खिलाफत दूंगा। अभी तेरे शोहर से तो चली गई, तेरे बेटे को खिलाफत मिलेगी, आयत पढ़ दी मैंने, और ये हुकूमत कायम होकर रहेगी। आज हमारी जिम्मेदारी का, हम आप बीवी से, बीवी के सामने कहेंगे या फातिमा, हम फातिमिया हैं, हम इस मिशन में शरीक हैं, याबुदुनी ला युशरिक बी शैया उसमें शरीक है, और हम इताअत अल्लाह इताअत रसूल इताअत इमाम में शरीक है, और हम भी अमर बिन मारूफ और नाहे मुनकर के लिए ताबे हैं, ताकि हर सोसाइटी में हर जगह हम इस अमर को अंजाम दें जो बीबी ने उस मजलूमियत में मदीने में अंजाम दिया था। ये आज हमको इस बात का तहिया करना चाहिए। हाय रे वो वक्त, अब मैं आखिरी की मंजिलों में पहुंच गया। हाय वो वक्त, क्या वक्त था कि जोहर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी से इमाम अली बाहर आ रहे थे, कनीजे दौड़ती हुई आई और कहा कि आप जल्दी घर चलिए, फातिमा जहरा अब आखिरी लम्हों में है। मौला अली घर तशरीफ लाए, अमामा उतारा, देखा कि बीबी तकलीफ में है। मौला गए कहे फातिमा क्या हुआ, क्या हाल है? तो कहा कि अबुल हसन अब मेरे जाने का वक्त है। मौला ने कहा तुमको किसने खबर दी कि तुम आज रात जा रही हो? तो कहा अबुल हसन मेरे बाबा ख्वाब में आए थे, मोती के महल में बैठे थे, कहने लगी बेटी आज रात को तुम मेरे पास आने वाली है, ए अबुल हसन यासीन शरीफ पढ़ो, और जब तुम यासीन तमाम करोगे तो मेरी रूह कब्ज हो जाएगी। अरे मौला रोने लगे, गिरिया करने लगे, अशार पढ़ने लगे। बीबी ने भी अशार पढ़ के सुनाए। बीबी ने जिक्र करी हसनैन की, कहा कि देखो हसनैन इस छोटी सी उम्र में नाना को खो चुके हैं, अब मुझे खोने वाले, उनका बहुत ध्यान रखना। अरे उस घर की कैफियत क्या होगी, अरे छोटे छोटे नन्हे बच्चे, अरे मुसलमानों अपने दिल पे हाथ रख के देखो, अरे तुम्हारे भी नन्हे नन्हे बच्चे, अरे चार नन्हे नन्हे बच्चे, एक 7 बरस का, एक 6.5 बरस का, 2 छोटी बच्चियां और माँ का सीन 18 बरस का। अरे उन बच्चों की क्या कैफियत होगी जब माँ की हालत देखी होगी, अरे दिल फटता है सोच के इन छोटे बच्चों की तरफ के क्या हालत होगी। और फिर मौला ने यासीन पढ़ी, यासीन पढ़ के देखा बीबी की रूह कब्ज कर गई, हसनैन आगे बढ़े, गिरिया करने लगे। अरे हसनैन के दिल की तरफ देखो, अरे वही हसनैन है जिन्होंने चंद माह पहले अपने नाना जैसे रसूल को खोया, आज वही छोटे छोटे बच्चे अपनी मादरे की रामी को खो कर बैठ गए। अरे क्या हुआ, मौला ने बीबी को उसी पैरहान में गुस्ल दिया, हुनूद
सिंदूर लगाया, कफन पहना, चेहरा ढाक दिया। अरे हसने रोने लगे, उनके रोने को देख के, उनको गिरिया को देख के। अरे अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि बीबी के करहाट की आवाज आई, बीबी ने अपने दोनों हाथ खोल दिए, हसनैन जाके दोनों लिपट गए। अरे फैज़ ग़ैबी से आवाज आई, ए अली हसनैन को हटा लो, फरिश्ते गिरिया कर रहे।